श्री राम जय राम जय जय राम। 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 ओम सर्व वेदांत सिद्धांत गोचरं तमगोचरं गोविंदं परमानंदं सद्गुरुं तृणतोस्मि हम अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्म गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। अज्ञानतिमरान्धस्य ज्ञानाजनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ आद्गुरये नमः जुगाद्गुरये नमः सतगुरये नमः श्रीगुरुदेवये नमः। ॐ शांति 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 सच्चिदानंद भगवान की जय। श्री स्वामी जी महाराज की जय। सतगुरुदेव महाराज की जय। कण कण में विराजमान घट घट में व्याप्त सर्वंत्र जामी प्रभु पिता परमात्मा के चरणों का ध्यान करते हुए परम श्रद्धेय परमादरणीय ब्रह्मलीन वेदांत के श्री श्री स्वामी जी महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। अनंत श्री विभूषित निर्मल पीठाधीश्वर परम वीतराग श्री 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 महंत साहिब जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। इस पावन पवित्र स्थली में आत्मचिंतन के पिपासु सभी श्रोतागण हम लोगों का सबका अहोभाग्य है जो महाराज श्री की पावन पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में उन्हीं की प्रेरणा से हम कुछ वेदांत का चिंतन कर रहे हैं। ईशावास्य उपनिषद के ऊपर हम चिंतन विचार कर रहे हैं। ये जो हमारे को मनुष्य जन्म प्राप्त हुआ है बहुत भाग्य से प्राप्त हुआ है। भाग्यो देन बहु जन्म समर्जितेन सत्संगमम च लभते पुरुषो यदा वै अज्ञान हेतु कृत मोह मदंधकार नाशं विधाय तदो दैते विवेक। बहुत जन्मों के जब पुण्य उदय होते हैं तब हमारे को यह जो दुर्लभ मनुष्य जन्म है इसकी प्राप्ति होती है। और ऐसा अमूल्य जन्म प्राप्त करके जब और भगवान की कृपा होती है तो सत्संग की प्राप्ति होती है। जब सत्संग की प्राप्ति होती है तो सत्संग से क्या हमारे को फल मिलता है, विवेक की प्राप्ति होती है। तो जब हमारे हृदय में विवेक जागृत होता है तो उसका फल क्या है? अज्ञान कृत मोह मद अंधकार। अज्ञान के द्वारा जो माया से कृत जो अंधकार, माया रूपी अंधकार से कृत ये जो मोह रूप नाम रूपात्मक संसार है उसकी निवृत्ति होती है। तो इसलिए सत्संग तुलसीदास महाराज जी भी महिमा करते हैं कि बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। बिना सत्संग के विवेक नहीं होता। विवेक का अर्थ क्या है? नित्य नित्य वस्तु विवेक, नित्य और अनित्य वस्तु के यथार्थ स्वरूप का चिंतन करके निश्चय कर लेना कि नित्य क्या है अनित्य क्या है। तो नाम रूपात्मक संसार अनित्य है और जो सच्चित आनंद अस्थि भाति प्रिय रूप में जो कण कण में विराजमान है ब्रह्म तत्व वह नित्य है। जब ऐसा विवेचन करके हम निश्चय कर लेते हैं उसको कहते हैं विवेक। तो जब विवेक आता है तब हम चिंतन करके अपने स्वरूप को प्राप्त हो सकते हैं। विवेक के लिए वैराग्य चाहिए। जब तक वैराग्य नहीं हुआ संसार से तब तक चिंतन नहीं हो सकता। इसलिए विवेक वैराग्य फिर खट संपत्ति और मुमुक्षता यह साधन चतुष्टय संपन्न जो अधिकारी है जिसका मन विक्षेप कर्म उपासना से जिसने हटाया है वह फिर ज्ञान में प्रवेश करता है। तो हम चिंतन कर रहे हैं जो उपनिषद है इसमें ज्ञान की चर्चा है। उपनिषद वेद का ऐसा भाग है जो शिरोमणि भाग है जिसमें केवल ज्ञान की चर्चा है। तो हमारा विचार यह चल रहा है, चिंतन चल रहा है, उपनिषद ईशावास्यम इदम सर्वम जत किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजीथा मां हृदा कस्य स्विधनम। इसका चिंतन किया हमने प्रथम श्लोक का, मंत्र का। दूसरे मंत्र का चिंतन किया कुर्वन्ने वेह कर्माणि जिजी विशेष सतम समा। उसके बाद उन दो मंत्रों में हमारा चिंतन करने का हमारे को फल क्या प्राप्त होता है? यदि किसी ने इन दो मंत्रों का चिंतन कर लिया तो उसकी स्थिति ऐसी होनी चाहिए उसमें जो ब्रह्मवेत्ता है तत्ववेत्ता है उनकी अवस्था का वर्णन किया पहले मंत्र में और दूसरे मंत्र में जो अभी अविद्वान है अभी जिनका ज्ञान दृढ़ नहीं हुआ उनके लिए बतलाया गया कि उनको भोग में त्याग अर्थ में निर्लोभता और सभी सर्वत्र ईश्वर दर्शन करते हुए 100 साल तक जीने की इच्छा से कर्तव्य बुद्धि से कर्म करना चाहिए। भाव उसके कर्म में भोग की वासना नहीं होनी चाहिए, कर्तव्य बुद्धि से करना चाहिए। कर्तव्य बुद्धि का अर्थ है कि जो कर्म वेद से विहित हैं जिनको करने का विधान है और जो निषेध हैं उनको नहीं करना चाहिए और फल की इच्छा से रहित होकर के कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। कर्म में अधिकार है कहते हैं आपका, फल में नहीं। आप कर्म को कर्तृत्व बुद्धि से मत कीजिए, ईश्वर अर्पण बुद्धि से कीजिए। पर जो भी हम कर रहे हैं तेरा तुझ कह अर्पण, जब हमारी ऐसी ईश्वरार्पण बुद्धि रहेगी तो उसका कर्म का जो फल होता है अच्छा करेंगे बुरा करेंगे तो उसका फल नहीं मिलेगा। जब ईश्वर अर्पण कर देंगे तब फल नहीं मिलेगा। फल उसका होता है लेकिन अंतःकरण की शुद्धि रूप फल होता है। संसार में जन्म मरण का चक्र जो आता है ये फल से ही आता है। तो यहाँ पर चिंतन चल रहा था हमारा कि कर्म उपासना के उपरांत ज्ञान की प्राप्ति के लिए फिर प्रयत्न करते हैं कोई कोई लोग, लेकिन जो नहीं करते। कल भी हमने आपको एक श्लोक विवेक चूड़ामणि का श्रवण कराया था। शंकराचार्य भगवान कहते हैं कि ये हमारे को जो दुर्लभ जो जन्म प्राप्त हुआ है, लब्ध्वा कथंचन नरजन्म दुर्लभम तत्रापि पुंस्तम श्रुति पारदर्शनम यह स्वात्मुक्त न यतेत मूढ़धी सह्यात्मा विनिसंत सद्ग्रहात। अर्थात कहते हैं भगवत्पाद शंकराचार्य जी कि जिन्होंने ऐसा जन्म प्राप्त किया है, मनुष्य जन्म, वो भी कैसा दुर्लभ है कि जिसको प्राप्त करके हम जो श्रुति का तात्पर्य है, वेदांत का तात्पर्य है, उसको जान सकते हैं। पुंस तो हमारे को पुरुषत्व प्राप्त हुआ है। यदि इस ऐसी दुर्लभ वस्तु को, मनुष्य जन्म को प्राप्त करके कोई आदमी अपनी आत्मिक मुक्ति के लिए चिंतन नहीं करता, यत्न नहीं करता, तो मूढ़ थी, जान लीजिए वह मूर्ख बुद्धि है, क्योंकि उसको अवसर प्राप्त हुआ है ना। किसी किसी को अवसर मिलता है, सबको नहीं मिलता है ना। भई प्राप्त मानुख दे हुरिया, गोविंद मिलन की यह तेरी बरिया, ये बारी है, तेरे को अवसर प्राप्त है, तेरे को एक मौका दिया है। किसके लिए दिया है? गोविंद मिलन की, गोविंद को मिलने के लिए, ब्रह्म तत्व से अभिन्न होने के लिए अवसर मिला है। यदि इस अवसर का लाभ नहीं कोई उठाता तो मूढ़ थी, मानव मूर्ख बुद्धि है। और जो इस श्लोक में शब्द आ रहा है जिसका हम चिंतन कर रहे थे, आत्मघाती, वही वहाँ पर कहते हैं कि ऐसा जो मूढ़ बुद्धि पुरुष है, सह हे आत्महा, वह पुरुष ही आत्मघाती है। मिनिहंत्या सद्रहात, क्योंकि उसने असत का ग्रहण किया, संसार की असत वस्तुओं को इकट्ठा किया है, इसलिए वो अपने आप को, अपने आत्मा का घात कर रहा है, आत्मा का चोर है वो, आत्मघाती है। वैसे आत्मा का घात होता नहीं, कल भी हमने आपको बताया था, ना तो उसको शस्त्र काट सकता है, ना पानी उसको गीला कर सकता है, ना वहाँ हवा सुखा सकती है, ना जायते मृियते वा कदाचन, ना वो आता है, ना जाता है, ना जन्म लेता है, उसको आत्मा का नाश होता ही नहीं। पर नाश किसी चीज़ का, नाश का मतलब क्या होता है? कोई भी चीज़ है आपको दिखाई पड़ती है, उसके नाश का तात्पर्य क्या है, उसका घात क्या है? मानो किसी चीज़ का घात किया, उसका मतलब है, तात्पर्य कि उस स्वरूप, वो जो वस्तु थी, उसका जैसा स्वरूप था, जैसा उसका उपयोग था, उसको स्वरूप से, उपयोग से वंचित कर देना ही उसका घात है। तो आत्मा का सदुपयोग, जो हमारे को ये मनुष्य जन्म प्राप्त हुआ है, इसका सदुपयोग किस में है? चिंतन करके आत्म स्वरूप में स्थित होना ही इसका तात्पर्य है। तो उस आत्ममुक्ति के लिए, मानो जिसने यत्न नहीं किया, आत्मा के स्वरूप को यथार्थ रूप से नहीं जाना, उससे च्युत हो गया, उसका सदुपयोग नहीं किया, वही आत्मघाती है। उसने मानो यही आत्मा का घात है कि आत्मा के स्वरूप को ना जानना, भूल जाना। और संसार में आत्मघाती हम किसको बोलते हैं? आत्महत्यारा किसको बोलते हैं? जिसने शरीर को नष्ट किया है, जिसने शरीर को नष्ट किया है, जहर खाया अथवा फांसी लगाई, उसको हम आत्मघाती कहते हैं। तो समझने में, शरीर का घाती है वो, आत्मा का घाती नहीं है। शरीर का घात किया उसने, आत्मा का नहीं किया। और शरीर भी स्थूल शरीर, बाहर वाला जो शरीर है, इसका नाश किया। शरीर तो तीन है वेदांत के अनुसार, किया तो नाश इसलिए शरीर का कि मेरे को ये शरीर, जब मैं ये समाप्त कर दूंगा तो मैं सुखी हो जाऊंगा, इसलिए किया ना। दुखी होने के कारण किया था ना, सुख लेने के लिए। लेकिन जो भ्रांति थी ना उनको, जो भी ऐसा करता उसको भ्रांति होती है। जीते हुए अपने आप को शरीर ही मानता है, जब तक जीता है शरीर ही मानता है, मैं दुखी मैं सुखी, ये क्या है, शरीर का ही तो है ना आसक्ति, मैं मोटा मैं पतला, ये इस शरीर का मोह है, आसक्ति है बाहर वाले की, मैं गोरा मैं काला, ये इसकी आसक्ति है बाहर वाले की। जो इसके अंदर जो सूक्ष्म शरीर है उसके साथ जब हम आसक्त होते हैं तो उसकी क्या निशानी है, मैं सुखी मैं दुखी, मैं पुण्य मैं पापी, ये सूक्ष्म शरीर के साथ आसक्ति है। तो शरीर ही माना था अपने आप को, तो इसलिए कहा मैं बहुत दुखी हूँ, इसलिए समाप्त कर दूँ मैं अपने आप को, अपने आप को समाप्त करता हूँ। कई बार कोई लिख के जाते हैं ना कि मैं इस रोग से या इस दुख से कष्ट से दुखी होकर के अपने आप को समाप्त करने जा रहा हूँ, लिख के दे देते हैं ना, अपने आप को कहते समाप्त करने जा रहा हूँ। तो इसका मतलब क्या हुआ, शरीर जो था शरीर के साथ आसक्ति होने से अपने आप को शरीर ही माना था, इसलिए उन्होंने कहा मैं अपने आप को समाप्त कर रहा हूँ। यदि ऐसा चिंतन करते हैं हम, हमारे को पता चल जाता है कि मैं शरीर नहीं हूँ, सुख दुख का अनुभव कौन करता है, अंतःकरण का काम है, सुख दुख का अनुभव करना मेरा काम नहीं है, मैं अंतःकरण नहीं हूँ, मैं तो उसका साक्षी हूँ। तो सुखी दुखी पना किस में है, अंतःकरण में, हमारे में नहीं है, लेकिन हम उसके साथ कई जन्म जन्मांतरों से इतना आसक्त हुए हैं कि हमारे को मालूम नहीं पड़ता। जैसे दूध में घी, दूध में जैसे पानी मिला देते हैं तो पता नहीं चलता, ऐसा हो गया, उसको अलग नहीं किया जा सकता, हम नहीं कर सकते उसको। दूध में पानी मिला दो या शक्कर मिला दो, उसको कहो कि इसमें से शक्कर निकाल के दिखा लो, शक्कर को ला करके दिखाइए तो कोई दिखाएगा, पानी को दूध से अलग करके कोई दिखाएगा, कौन करता है, कोई है ऐसा करने वाला, एक है इसी संसार में, एक है जो दूध और पानी को अलग कर देता है, उसको क्या बोलते हैं, हंस बोलते हैं। हंस की चोंच में ऐसी शक्ति है कि जब दूध को चोंच लगाता है तो पानी अलग हो जाता है, दूध अलग हो जाता है, इसलिए नीर क्षीर विवेकी कहते हैं महात्माओं को। नीर क्षीर, नीर जो है पानी, क्षीर मतलब दूध, उसका विवेकी कौन होता है, हंस होता है ना, अलग कर देता है। तो जो भी ऐसा काम कर लेता है संसार में से असार को अलग निकाल देता है, सार को ग्रहण कर लेता है, वो नीर क्षीर विवेकी होता है, उसको हंस बोलते हैं। उसकी दृष्टि ऐसी होती है कि वो कहीं में जाएगा किसी भी वस्तु में देखेगा तो असार को नहीं देखेगा, नाम रूप को नहीं देखेगा, अस्ति भाति प्रिय का दर्शन करेगा हर एक वस्तु में, नीर चीर विवेकी है। लेकिन जो बगला होता है, एक हंस है एक बगला है, तो बगला भी तो हंस जैसा है ऊपर से, उसकी दृष्टि में तो उसकी आकार में तो अंतर नहीं है, लेकिन दृष्टि में अंतर है कि नहीं। वो जब भी बैठता है तो समाधि भी लगाता है, आंखें भी मीचता है, लेकिन देखता क्या है, उसकी उसका चिंतन किस बात का है, मच्छी वहाँ से अंदर से जीव जंतु खाने की दृष्टि है ना उसकी, लोभ दृष्टि उसकी, संसार की दृष्टि है, वो असार को ग्रहण करता है, सार को नहीं ग्रहण करता। तो हम हंस की तरह हमारी वृत्ति जब होगी, नीर चीर विवेकी होंगे तब जान पाएंगे। तो जो शरीर का नाम रूपात्मक दोनों के साथ, प्रपंच के साथ जुड़ा है ना, शरीर का नाश नहीं होता उसका, वो अपने आप को, उसने अपने आप का नाश किया, वो कहता मैंने अपने आप को नाश करने जा रहा हूँ। यदि उसने अपना आप नाश कर लिया तो हमारे को उसमें संशय क्यों रहा, उसने तो लिख दिया कि मैं अपने आप को समाप्त कर रहा हूँ, लेकिन उसके मरने के बाद भी हम लोगों का संशय है कि नहीं उसके ऊपर, हम लोग उसके लिए पूजा पाठ कराते हैं कि नहीं। जब कोई पूरा समाप्ति हो गया तो उसके हमारे को संशय क्यों है, हमारे को तो है भी ये कहीं गया है, वो तो लिख के चलेगा कि मैं अपने आप को समाप्त करने जा रहा हूँ, लेकिन हमारे को अभी संशय है भी नहीं, वो समाप्त नहीं हुआ, कहीं ना कहीं है। उसके लिखने के बाद भी हमारे को संशय है कि वो कहीं ना कहीं है। वो तो लिख रहा है कि मैं जा रहा हूँ, मैं अपने आप को समाप्त कर रहा हूँ, तो यही तो भ्रांति है कि वो कहीं ना कहीं है। इसका मतलब जो है शरीर के बाद भी जो है वो क्या है? आत्मा है। उसका हनन नहीं हुआ, शरीर का हनन हुआ। न हन्ने हन्ने माने शरीर, शरीर के नाश होने पर भी उसका नाश नहीं होता। शरीर तो नाश हुआ लेकिन अभी आत्मा है, क्योंकि वो हनन करने योग्य ही नहीं है, उसका हनन हो ही नहीं सकता। उसका जन्म ही नहीं हुआ, जिसका जन्म होता है उसकी मृत्यु अवश्य होती है, और जिसकी मृत्यु होती है उसका जन्म अवश्य होता है, दोनों ही बात है। जिसका जन्म होगा उसकी मृत्यु होगी, जिसकी मृत्यु होगी उसका जन्म फिर होगा। लेकिन जिसका जन्म नहीं है, ना जायते म्रियते वा कदाचिन, जो कभी ना जाता जन्मता है ना मरता है, वह है आत्मा। तो उस आत्मा का घात नहीं हो सकता। यहाँ पर यह कहते हैं कि जो आत्मघाती लोग हैं वो कहाँ जाते हैं, उनकी क्या हालत होती है? वो जाते हैं जहाँ से जब जाते हैं मर के, हम मानते हैं ना कि मरने के बाद कहीं गए हैं, तो कहाँ गए हैं, किस लोक में गए हैं वो लोग? असूरिया नाम थे लोक का। श्रुति कहती है कि असुरों के लोगों में गए हैं, असुरों के लोग। असुर किसको कहते हैं? राक्षस को हम कहते हैं ना असुर। तो जहाँ पर दो बात बतलाई गई है कि जो ऐसे लोग होते हैं वो जीते हुए कहाँ रहते हैं, मरने के बाद कहाँ जाते हैं, दोनों प्रकार की उनकी गति बतलाई गई। तो आप कहेंगे ये तो विरुद्ध बात है। प्रश्न होता है कि नहीं कि आत्मघाती भी हो और जीता भी हो, ये कैसे हो सकता है? हम कहेंगे कि नहीं, हम कहते हैं आत्मघाती भी हो और जीता हुआ हो तो विरुद्ध बात हो गई ना, हमारी दृष्टि से विरुद्ध है। भी आत्मघात का मतलब मर गया, तो श्रुति कहती है कि नहीं, आत्मघाती है और जीवित है। तो इसका मतलब कोई तात्पर्य, कोई इसमें रहस्य है ना, बात समझने वाली है कि आत्मघाती भी है जीवित भी है। श्रुति उसकी बात करती है जो जीता हुआ आत्मघाती है, तो फिर समझना पड़ेगा ना कि हमारे समझने में अंतर है कि जीवित पुरुष भी आत्मघाती हो सकता है। हम तो मरने वाले को आत्मघाती कहते हैं, तो इसलिए आत्मघात का अर्थ चिंतन करना पड़ेगा कि जीता हुआ आत्मघाती कौन है। जीवित आत्मघाती वह लोग हैं जो जीते हुए केवल इंद्रियों के भोगों में रमण करते हैं। असुसु रमते इति असुरा, असुर है ना, इसमें असुर शब्द है कि वो लोग कहाँ रहते हैं, असुर लोग में रहते हैं। जो आत्मघाती होते हैं वो कहाँ जाते हैं, किस लोग में रहते हैं? असुरों के लोगों में। तो असुर का अर्थ क्या है? हम कहते हैं राक्षस लोग, जो बड़े बड़े दांतों वाले, बड़े बड़े सींगों वाले। हमारे कोई छोटे जब कोई बताता है राक्षस होते हैं, उनके इतने इतने सींग होते हैं, बड़े बड़े दांत होते हैं, भयानक होते हैं, उनको हम असुर गिनते हैं, राक्षस गिनते हैं। यहाँ पर असुर का अर्थ क्या? असु सुरमते थी रमनते थी असुरा। असु इंद्रिय, जो हमारे इंद्रिय हैं, जब प्राण है, प्राण है या इंद्रिय हैं, इनके उपभोग में जो रमण करते हैं, संसार के पदार्थ इकट्ठे करके इंद्रियों को देते रहते हैं। इंद्रियों की और प्राणों की भूख के मटाने के चक्कर में ही रहते हैं जो लोग, जड़ जड़ बुद्धि वाले लोग, वह है आत्मघाती। दूसरी बात, वह लोग आत्मघाती हैं जो अपने ज्ञान का निरादर करते हैं, अपने ज्ञान का आदर नहीं करते, प्रकाश का आदर नहीं करते। वो लोग कौन हैं? जब अपने ज्ञान का आदर नहीं करते तो फिर क्या है? संसार की सत्यता में रहते हैं, संसार को सत्य मानते हैं, अपने ज्ञान का आदर नहीं किया। अपना ज्ञान क्या है? अपना स्वरूप ज्ञान, उसको भूल गए। सत्य तो वो था लेकिन उसका निरादर करके इसको सत्य मान दिया। तो वो लोग असुर हैं, आत्मघाती हैं, क्योंकि अपने स्वरूप का जानना उसका यथार्थ रूप से ना जानना, अपने ज्ञान को ना जानना, ज्ञान का सदुपयोग ना करना ही तो आत्मघात है। पहले भी बताया था ना कि किसी पदार्थ के स्वरूप को ना जानना, उसके जो उसका उपयोग है उसके वंचित कर देना ही तो आत्मघात है, उसका घात है। तो हमने अपने ज्ञान का आदर नहीं किया, ज्ञान के स्वरूप को नहीं, ज्ञान स्वरूप को नहीं जाना, ये ही आत्मघात है। ऐसे लोगों को कहते हैं असुर, वो असुर हैं क्योंकि इंद्रियों के उपभोग में ही रमण करते हैं सारी जिंदगी। तो कहते हैं बात तो ठीक है आपकी, असुर की बात तो हमारे समझ में आ गई। आप कहते हैं वो लोग असुर लोक में रहते हैं, तो जहां पर कहते हैं भी लोक का अर्थ क्या हुआ? असुर तो हम समझ गए जो इंद्रियों के भोगों में, संसार के पदार्थ इकट्ठे करने में, जड़ पदार्थों में जिंदगी व्यतीत करते हैं, उनको असुर कहते हैं। आप कहते हैं, भगवती श्रुति कहती है कि वहाँ लोग असुर लोक में रहते हैं, तो लोक का अर्थ क्या हुआ? लोक का अर्थ जहाँ धाम नहीं है, कोई घर नहीं है, जैसे इसको हम कहते हैं मातृलोक है, पितृलोक है, ये मृत्यु लोग है, ऐसा यहाँ पर अर्थ नहीं है लोक का। भगवान शंकराचार्य महाराज जी ने अपने भाष्य में लोक का अर्थ किया, वो कहते हैं कि कर्म फलानि लोक्यन्ते दृश्यन्ते भुज्यन्ते इति लोकाः, ऐसा अर्थ करते हैं, इसी लोक शब्द का अर्थ करते हैं कि जहाँ पर आपको कर्म के फल दिखाई पड़ते हैं, कर्म का फल आप जहाँ पर भोगते हैं, जो कर्म फल से दिखाई पड़ता है वो उसको कहते हैं लोक। कर्म फलानी दृश्यन्ते भुज्यन्ते लोक्यन्ते इति लोकाः, जिसमें आपको कर्म फल दिखाई पड़ता है ये मेरे कर्म का फल है, जिसमें आप उस कर्म के फल को भोगते हैं उसको कहते हैं लोक। तो वो क्या है? जन्मानि, कहते हैं उस योनि को ही लोक कहा है, जहाँ पर जिस योनि में आप कर्म का फल भोगते हैं उसको कहते हैं लोक। तो आप देख लीजिए यहाँ पर किसको कहा है, असुर लोगों में रहते हैं वो लोग, जीवित हुए जीते हुए, जो लोग केवल अपने कर्म का फल इंद्रियों के भोग भोगते रहते हैं ना, भाव इस जन्म में भी यदि ऐसा करते हैं तो ये जन्म ही असुर लोक है। लोक का अर्थ हुआ जहाँ आप फल को भोगते हैं, तो लोक हुआ ये, इसमें रहते हुए जो इंद्रियों के भोग में भ्रमण करते हैं, उन्हीं का भोग करते हैं, वो असुर हैं, राक्षस हैं वो लोग। तो उनको जहाँ पर कहते हैं कि ऐसे जो लोग हैं वो आत्मघाती हैं, जीते हुए आत्मघाती, क्योंकि जीवित रहते हुए उन्होंने आत्मा का आदर नहीं किया, ज्ञान का आदर नहीं किया, निरादर किया है। तो उन लोगों को एक और बात बतलाते हैं भाई, पहले बतलाया गया था कि जो ईशावास्मिदं सर्वं, जिनकी दृष्टि बन जाती है, उन्होंने उस आदेश का पालन नहीं किया, सर्वत्र ईश्वर दर्शन नहीं किया, अपने ज्ञान का आदर ना करना, इसका अर्थ क्या हुआ कि सर्वत्र ईश्वर दर्शन नहीं किया? यदि ज्ञान का आदर करते तो सब जगह ईश्वर दर्शन होता। हमारे कोई भी हम संसार में कर्म करते हैं तो हम जब कोई निषिद्ध कर्म करते हैं, जिसको वेद ने विहित नहीं किया, कहने को नहीं, करने को नहीं कहा, जब कोई हम बुरा कर्म करते हैं तो अपने ज्ञान का निरादर करके करते हैं। ये तो आपने अनुभव किया होगा, कोई भी आदमी बुरा कर्म करता है तो उसके अंदर से आवाज़ आती है कि नहीं ये अच्छा नहीं है, इसका फल अच्छा नहीं होगा, लेकिन फिर भी करता है, लोभ के वशीभूत होकर के करता है, ईर्ष्या राग द्वेष करता है, जो भी करता है, मानो किसी का मारना, किसी का हरण करना, किसी का धन छीनना, जब कोई ऐसा कर्म करता है तो उसको मालूम होता है कि ये गलत है, लेकिन ज्ञान का निरादर करके किया है, ज्ञान का आदर नहीं किया। तो मानो वो इंद्रियों की भूख मिटाने के लिए कर रहा है ना, प्राणों को तृप्त करने के लिए, इंद्रियों को तृप्त करने के लिए कर रहा है, तो उसको कहते हैं आत्मघाती। तो उसने सर्वत्र ईश्वर दर्शन बुद्धि का निरादर किया। और दूसरा क्या, जो वहाँ बात कही थी कि भोग में त्याग नहीं है उसके अंदर, भोगों को इकट्ठा करने के लिए तो ऐसा कर्म कर रहा है। और तीसरा क्या, अर्थ में निर्लोभ नहीं है, अर्थ धाने इकट्ठा करने का लोभ है, तो ये बातें उसके अंदर नहीं है इसलिए उसने ऐसा किया। इसलिए कहते हैं कि आत्मघाती का अर्थ आप ये समझिए कि जो लोग नहीं समझ पाते आत्मा के यथार्थ स्वरूप को, वही लोग आत्मघाती हैं। फिर कहते हैं वो लोग जो हैं वो कोई भी हो, इसमें कोई एक आदमी या एक मजहब की, एक जाति की बात नहीं है। किसी जाति का हो, किसी मजहब का हो, मुसलमान हो, ईसाई हो, कोई भी हो, हिंदू हो, सिख हो, मुसलमान हो, कोई भी हो, जहाँ पर सबकी बात है कि जिसने ऐसा किया, जो इंद्रियों के भोगों में रमण करते हैं, किसी भी जाति व्यक्ति विशेष के हों, सबकी बात कही है कि वो आत्मघाती हैं। वो असुरों के लोगों में रहते हैं, भाव इस जन्म में भी उसी तरह रहते हैं और मरने के बाद भी। तो कहते हैं कि एक और अर्थ किया शंकराचार्य महाराज जी ने कि जो आत्म तत्व ब्रह्म तत्व है, जो अद्वैत स्वरूप ब्रह्म तत्व है, उसकी दृष्टि से देवता लोग भी असुर हैं। ये भी भाष्य में कहा है शंकराचार्य जी महाराज ने कि परम तत्व जो आत्म तत्व है उससे वंचित हैं तो देवता लोग भी असुर हैं, क्योंकि वो भी अपने उपभोग में रमण करते हैं, यदि करते हैं तो वो भी असुर हैं। तो इसलिए आत्मघात का जो अर्थ है वो समझना पड़ेगा। यदि एक और बात भगवती श्रुति ने कही है कि केन उपनिषद में एक बात कही कि इह चे द्वैदी सत्यमस्ति न चेदिहा वेदी महति विनष्टि, इस जन्म में इस मनुष्य जीवन में यदि कहते किसी ने अपने नित्य शुद्धम मुग्ध जो अपना स्वरूप है उसके सत्य को जान लिया, उसको सत्य मान लिया, सत्य में स्थित हो गया, तब तो उसका ये जीवन का सत्य उसने समझ लिया। इहा चेत, यदि इहा इस जन्म में इस लोग में रहते हुए अवेदी उसने जान लिया तो सत्यमस्ति, बहुत अच्छी बात है। तो न चेत इहा, यदि उसने इस जन्म में अपने जीवन के सत्य को नहीं समझा तो महति वनष्टि, बहुत बड़ा नाश है उसके लिए, बहुत बड़ा घाटा है। तो इसलिए जो तत्ववेकी लोग होते हैं, नीरव क्षीर विवेक वाले होते हैं, वो जतन करते हैं कि इस मनुष्य जन्म हमारे को प्राप्त हुआ है तो इसमें हम चिंतन करके अभेद हो जाएं। इसलिए कहते हैं कि एक और बात कहते हैं कि आप तो नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त हो, लेकिन आप अपने को कर्म में लिप्त मानते हैं कि नहीं। हम लोग नित्य शुद्ध बुद्ध होते हुए भी अपने आप को कर्म में लिप्त मानते हैं। दूसरी बात है कि आप आत्मा हैं, ब्रह्म से अभिन्न हैं, सर्व आत्मा है आप, सर्वव्यापी हैं, अपरिच्छिन्न जो ब्रह्म है उसके साथ आपकी अभेदता हुए भी आप अपने को दीनहीन दुखी सुखी राग द्वेष से युक्त मानते हैं। तो ऐसे जो लोग हैं उनके लिए एक संत संजाति संहिता में एक श्लोक आता, अन्यथा संत मात्मानम जो अन्यथा प्रपद्यते किंते नक्तम पापम चौरेण आत्मा पहारिणा। जिसने आत्मा को सच्चित आनंद स्वरूप होते हुए अन्यथा जान लिया, भाव आत्मा को अपरिच्छिन्न मान लिया, कर्ता भोगता मान लिया, कर्म में लिप्त मान लिया, किंते न कृतम पापम, मानो ऐसा जो व्यक्ति है उसने कौन सा पाप नहीं किया, वो सबसे बड़ा पापी है। ये कहती है, ये शास्त्र कहता है कि वो आत्मा का चोर है, उसमें कोई संसार का ऐसा पाप नहीं जो उसने नहीं किया। किसने, जिसने आत्मा को अन्यथा जान लिया, नित्य था आत्मा, शुद्ध था, परिपूर्ण था, उसको उसने अकर्ता भोक्ता ना जान के कर्ता भोक्ता कर्म लिप्त मान लिया, परिच्छिन्न मान लिया। ऐसा जो है व्यक्ति वो आत्मघाती है, चोर है। किंते न कतम पापम, उसने कौन सा पाप नहीं किया? भाव सबसे बड़ा तो उसका यही पाप है जो उसने अपने आत्मा का यथार्थ स्वरूप नहीं जाना, अपने ज्ञान का निरादर किया है। इसलिए ऐसे लोगों को कहते हैं कि वह आत्मघाती हैं। वो लोग फिर कहाँ रहते हैं? असुरिया नाम ते लोका, वो असुरों के लोगों में रहते हैं। भाव जो लोग अंधेन तमसावृता, एक और बात कही कि वो जो लोग हैं असुरों के लोग, वहाँ पर क्या चीज़ है? अंधकार है, अंधेर तमसावृता, वो अंधकार से ढके हुए हैं, आच्छादित हैं वो लोग। लोग का तो समझ लिया हमने कि वह जो जोनी है उसकी ना, वो अंधकार से ढकी हुई है, आच्छादित है, भाव अज्ञान से आच्छादित है। लोग उस लोक में रहते हैं वो लोग जिन्होंने आत्मा का हनन किया, आत्मा को नहीं जाना। तो कहने का तात्पर्य कि अंधकार से मतलब क्या है? वासना युक्त लोग हैं, वासना अहंता ममता से युक्त लोगों में वो लोग रहते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? हम अपनी जो ममत्व बुद्धि है उसको छोड़ेंगे नहीं, वासना का त्याग नहीं करेंगे, तो हम भी इसी कोटि में आएंगे। यदि हमने अपने ज्ञान को नहीं आदर नहीं किया, नहीं चिंतन किया, तो हम किस कोटि में आएंगे? आत्मघाती कोटि में आ जाएंगे। तो कहते हैं ऐसे जो लोग हैं वो तांस्ते प्रत्याभिगच्छन्ति, ये तो उनके जीवित रहते हुए बतलाया कि वो जीते हुए आत्मघाती हैं, असुरों के लोगों में रहते हैं जिन्होंने अपने स्वरूप का चिंतन नहीं किया। और दूसरी बात है कि तांस्ते प्रत्याभिगच्छन्ति, वो लोग फिर जब जहाँ से शरीर छोड़ जाते हैं तब कहाँ जाते हैं? तांस्ते प्रत्याभिगच्छन्ति जे के चात्महनोजनाः, जो आत्मघाती लोग हैं वो शरीर छोड़ने के बाद भी उन्हीं लोगों में जाते हैं। भाव ऐसे योनियों की प्राप्ति होती है उनको। लोक का अर्थ तो हमने बता दिया आपको, योनि ऐसी योनि जिसमें आपको कर्म का फल भोग होता है, वह योनि। तो उस योनि में जाएंगे, उस लोग में जाएंगे। किस लोग में? जो लोग अंधकार से व्याप्त हैं, जिसमें वासना है, वहाँ पर वो प्राप्त होंगे। ये तो गति बतलाएगी जीवित की और मरने की, कि लोग वहाँ जाते हैं। तो इसलिए इस श्लोक का तात्पर्य क्या हुआ, इसका फल, इसका रहस्य क्या हुआ श्लोक का, कि हमारे को आत्मघाती नहीं बनना, असुर नहीं बनना। असुर मत बनो। असुर ना बनने का मतलब क्या हुआ? कि इंद्रियों के उपभोग में रमण मत करो। इंद्रियों के भोग जो हैं उनको कैसे करो? त्याग वृत्ति से। पहले श्लोक में जो आई थी बात, उसी की बात चल रही है ना, कि त्याग वृत्ति से आप उपभोग करो संसार के पदार्थों का। यदि आप केवल इंद्रियों की तृप्ति के लिए करते हैं तो असुर हैं, हम लोग भी असुर हैं। तो दूसरी बात कि अर्थ में लोभ नहीं चाहिए, गीध वृत्ति नहीं चाहिए। शुरू में कहा था माँ गिदा कस्य स्विधनम, गीध वृत्ति छोड़ दो। अर्थ में निर्लोभता आ जाए, भोग में त्याग आए। दूसरी बात है कि यदि आप आत्मघाती कोटि में रहेंगे तो आपके अंदर जो पहले श्लोक का आदेश था वो प्रवेश नहीं कर पाएगा। ईशावास्यमिदं सर्वम, ये वृत्ति हमारी नहीं बन पाएगी। फिर हम तेन त्यागेन भुंजी था नहीं बनेंगे, ना तो सर्वत्र ईश्वर दर्शन होंगे, ना भोग में त्याग होगा, ना अर्थ में निर्लोभता आएगी, और ना ही हमारी कर्तव्य बुद्धि बनेगी। तो यदि ऐसा नहीं होता तो महति वनस्ति, मानो इस जन्म में आने का तात्पर्य कुछ नहीं हुआ। जैसे संसार में और प्राणी पशु पक्षी बरतते हैं ऐसे ही रह जाएंगे हम। हमारा ज्ञान जो था उसका हमने निरादर किया, तो इसलिए चिंतन करना चाहिए कि हमारे को जे जब जन्म दिया है भगवान ने तो इसका तात्पर्य है कि इसके अंदर रह करके हम लोग असुर वृत्ति ना बनाए, आत्मघाती ना बने। यदि कोई इस बात आत्मघात का अर्थ समझ जाए ना, संसार के लोग समझ जाएं, तो जो अखबारों में टीवी में हम खबरें सुनते हैं ना, आत्मघात की कभी ना हो। करते तो शरीर का हनन है लेकिन समझते हैं कि मैंने आत्मा का हनन किया, अपने आप को मारना ही तो समझते हैं, अपना आप वो शरीर समझते हैं। तो परसों भी हमने चिंतन किया था इस बात का कि इसको समझना ही तो मुश्किल है। इस शरीर के बाद सूक्ष्म शरीर है, सूक्ष्म शरीर के बाद कारण शरीर है, उसके बाद में फिर कहीं हम उसके तीन शरीरों का जब हमारे को ज्ञान होता है, शरीर का बाद करते हैं, प्राण है, इंद्रिय है, अंतःकरण है, ये सब हमारी रुकावटें हैं हमारी यात्रा में। कल यात्रा के प्रकरण चला था कि जीवन यात्रा में हमारी जो मंजिल है, मंजिल तक पहुंचने के लिए रुकावटों को हमारे को लांघना होगा, तभी हम वहां पहुंच पाएंगे। तो कई बार हमारे को ऐसा सुनने पर भी संशय रहता है। कर्म अकर्म बहुत प्रकार की चर्चा होती है, लेकिन उस चर्चा को सुनने के बाद हम लोग समझ नहीं पाते। उस कर्म को करते हुए भी लोग दिखाई पड़ते हैं। कर्म धर्म जो सुन के उसके बाद उसको कर्ता दिशे सब लोए, ऐसा कहते हैं कि उस कर्म का नियम जो बतलाया गया है ना, उस नियम को सुन करके लोग करते हुए भी दिखाई पड़ते हैं, कर्ता दिशे सब लोए। लेकिन ऐसा एक ही होता है जो उस रहस्य को समझ पाता है। कर्म अकर्म विचारिय शंका सुन वेद पुराण, संसा सद हृदय वसै कौन हिरे अभिमान। रविदास जी महाराज कहते हैं कि कर्म अकर्म विचारिय शंका सुन वेद पुराण, वेद अथवा पुराण को सुनने पर भी संशय हो जाता है, क्योंकि ऐसे कई कर्म हैं वेद ने कहीं पर तो उन कर्मों को ना करने के लिए बोला है, कहीं पर करने के लिए बोला है, तो हमारे को संशय हो जाता है कि ये कर्म करना चाहिए कि नहीं। एक सामान्य बात है कि वेद में दो बात कही है, एक जगह कहा है कि किसी भी भूत प्राणी की हिंसा नहीं करनी चाहिए, और एक जगह कहा है कि जो यज्ञ में हिंसा होती है उसका कोई दोष नहीं है। पुरातन युग में यज्ञ होते थे ना, तो बलि नहीं देते थे, उसमें अश्वमेध यज्ञ होता था, गोमेध यज्ञ होता था, लेकिन बलि दी जा रही है ना, उसमें हिंसा हो रही है कि नहीं, तो वेद कहता वो हिंसा का कोई दोष नहीं है। वैसे कहता है कि किसी भी भूत प्राणी की हिंसा नहीं करनी चाहिए, तो जो आदमी विचार नहीं कर पाएगा वो नहीं ना समझ पाएगा। और भी कई ऐसी बातें होती है वेद की जो हमारे को समझ में नहीं आती। इस बात को लेकर के रविदास जी महाराज गुरबाणी में कह रहे हैं कि कर्म अकर्म विचारिय शंका सुन वेद प्राण, संसा सद हृदय बसे। फिर भी हमारे हृदय में संशय रह जाता है कि इस कर्म को हम करें कि ना करें, तो हमारा ये संशय कौन मिटाए, कौन हरे मान, इसका हमारा जो अभिमान है संशय का, इसको कौन मिटाए। संशय की निवृत्ति कैसे होती है, ज्ञान से। जब तक हम संशय युक्त हैं तब तक हमारी वृत्ति ज्ञान में प्रवेश नहीं कर सकती, निर्मल नहीं हो सकती। एक बात और कही है एक जगह, गुरु अमरदास जी महाराज कहते हैं कर्मी सहज ना उपजाए, मैंने सहज है सहसा ना जाए, ये आपने कई बार श्रवण किया होगा। आनंद साहब के पाठ में आती है पौड़ी, कर्मी सहज ना उपजाए, मैंने सहज है सहसा ना जाए। अब संशय की बात आ गई ना, संसा सद हृदय वसै कौन हरे अभिमान, संशय को कौन निवृत्त करे। तो कहते हैं संशय की निवृत्ति बिना ज्ञान के नहीं होती, कर्मी सहज न उपजाए। और ज्ञान कहाँ से प्राप्त होगा? एक दूसरे के पूरक है ना, संशय की निवृत्ति होती है ज्ञान से। और ज्ञान की प्राप्ति कैसे होगी? कर्मी सहज न, सहज का अर्थ है ज्ञान, शांति। तो कर्म करने से आपको ज्ञान नहीं होगा। ये कर्मों में संशय हो जाएगा कि नहीं आपको, जब ऐसा किसी ने बोल दिया कि कर्म करने से ज्ञान नहीं होता है? तो जो जड़ता बुद्धि वाला होगा, जिसकी कर्तव्य बुद्धि नहीं होगी, वो जड़ता पूर्वक कर्म का त्याग कर देगा। वो कहेगा नहीं, क्या लेना कर्मकांड करके, इसे ज्ञान तो होना नहीं है। तो जड़ता पूर्वक कर्म का त्याग किया ना, ज्ञान पूर्वक नहीं किया। कर्म जो करते हैं उसको छोड़ने के लिए थोड़ी कहते हैं, कर्म के फल की आसक्ति को छोड़ने के लिए कहते हैं ना, कर्मी सहज न उपजाए भाव। जब तक कर्मों के फल की आसक्ति है आपके अंदर, तब तक आपको ज्ञान नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि कर्म का जो फल है वो आपको मिलता रहेगा, तो आप जन्म मरण में आते रहेंगे, तो ज्ञान कहाँ होगा? ज्ञान तो होना है निष्कामता से। तो कर्मी सहज न उपजाए, बिना कर्मों के फल की आसक्ति के छोड़े भोग में त्याग। बात वही है कि जब तक कर्म भोग में त्याग नहीं है, कर्म कर्तव्य बुद्धि से नहीं करते, सहज न उपजे, तब तब आपके अंदर ज्ञान नहीं आ सकता। जब तक ज्ञान नहीं आता, तो बिन सहजे सहसा ना जाए, बिना ज्ञान के संशय दूर नहीं होता। जब तक संशय दूर नहीं होता, तब तक कैसी अवस्था है? दूसरी पंक्ति में बताते हैं गुरु अमरदास जी, सहसे जियो मलीन है। हमारी संशय की वृत्ति से, भ्रांति से हमारा जियो मलीन है, अंतःकरण हमारा मलीन है, क्योंकि अंदर संशय है, दुविधा है ना, अंदर द्वैत है। संशय का अर्थ क्या? द्वैत है। तो द्वैत ही तो मलिनता है हमारे अंदर, और क्या है? जब एकत्व आ जाएगा तो हम निर्मल हो जाएंगे। अरुण जी कई बार बात बतलाते हैं, जब बैठे होते हैं तो कहते, स्वामी जी कहते थे, वो क्या कहते थे, खालसा मेरे रूप है खास। एक बात करते हैं, स्वभाव खास, खालसा का अर्थ क्या होता है? शुद्ध निर्मल। यहाँ बात वही आ रही है ना कि शुद्ध का अर्थ क्या, जिसमें द्वैत नहीं है। तो गुरु महाराज जी कहते हैं, सहसे जियो मलीन है, आपका जो जियो अर्थात आत्मा, आपका जो जीवात्मा बोल लेते हैं, अंतःकरण वशिष्ठ को बोलते हैं, तो अंतःकरण में संशय है, द्वैत है। किसके कारण? जब आपको ज्ञान नहीं हुआ, सहसे संशय के द्वारा हमारा अंतःकरण मलीन है। कित संजमद होता जाए, एक ही जो वाक्य होता है उसमें सभी बातें होती हैं, प्रश्न भी उसके अंदर होता है, उत्तर भी उसके अंदर होता है। ये पहले बतलाया कि हमारे अंदर द्वैत है, इसलिए हमारा अंतःकरण मलीन है। तो उसका समाधान क्या है? कित संजमित होता जाए, ये प्रश्न है कि कौन सा ऐसा उद्यम है, कौन सा ऐसा साधन है जिसके द्वारा हमारा अंदर धो सकते हैं, हम भाव उसको शुद्ध कर सकते हैं। कित संजमित होता जाए, तो ऐसी बात नहीं कि प्रश्न करके ही छोड़ दिया, उत्तर भी दिया। उत्तर ये दिया कि पहले तो बतलाया कि सहसे जियो मलीन है, कित संजमित होता जाए, फिर कहते हैं मन धो। वो मन आ गया ना यहाँ पर, पहले नहीं स्पष्ट होता, पहले कहा जियो मलीन है, अब कहा मन धो। वो तो जियो और मन आ गया ना, दो शब्द आ गए। तो इसका मतलब क्या हुआ? जियो का अर्थ हम जीव मानते हैं ना, जीव किसको कहते हैं? अंतःकरण वशिष्ठ जो चेतना है उसको जीव कहते हैं। वो जो अंतःकरण वशिष्ठ जीव है, भाव जीवात्मा, उसी को जहाँ मन शब्द से कहते हैं, मन धोबहो, उस मन को शुद्ध करो, धोना है उसको, गंदा है ना वो, मलिन है, तो उसको धोना है। पहले कहा कैसे धोएं, अब बताते हैं कैसे धो। मन धोबो हो कैसे? शब्द लागो हो। यदि मन को धोना चाहते हो, अंतर जो हमारा अंतःकरण है उसको शुद्ध करना चाहते हो, तो गुरु महाराज कहते हैं, साधन बताते हैं हम आपको, शब्द लाग हो, हारसो रहो हो चितलाए, शब्द से जुड़ जाओ। अब शब्द से क्या लेंगे? मन धोवो शब्द लागो हरसो रहो चितलाए कहे नानक गुर प्रसादी सहज उपजे ए सहसा ए बजाए। यहाँ पर पूरा समाधान किया है कि नहीं। कहते हैं आप शब्द का चिंतन करो। शब्द कौन सा? शब्द का अर्थ क्या है? उपदेश, गुरु का उपदेश। शब्द न जाने से अन्य बोले से कित आए संसारा। इन्होंने शब्द को नहीं समझा, अंधे हैं वो, क्या है, बहरे हैं। से कित आए संसारा, उनका संसार में आने का क्या मतलब? जिन्होंने गुरु उपदेश को नहीं सुना, नहीं उसका दर्शन किया। अब शब्द का दर्शन थोड़ी होता है आंखों से, शब्द तो कान का विषय है, आंखों का विषय नहीं है। उन्होंने जाना नहीं है, समझा नहीं है, इसलिए कहते हैं शब्द से साथ लगो। शब्द का मतलब है कि गुरु उपदेश ग्रहण करो। तत्त्वमसी, जब गुरु के पास जाएंगे तो कौन सा शब्द मिलता है? तत्त्वमसी, तुम ब्रह्म हो। ये महावाक्य का उपदेश जो ही शब्द है। तो शब्द लागो हो, जब आप शब्द के साथ लगोगे, भाव उसका चिंतन करोगे, गुरु से लेकर के उपदेश, तो जब उसका चिंतन करेंगे उसके अनुसार गुरप्रसादी सहज उपजाए। फिर गुरु के प्रसाद, कहते गुरु की कृपा होती है, प्रसन्नता आती है आपके ऊपर, जब उनके अनुसरण करके आप चिंतन करते हैं जैसे हम लोग कर रहे हैं, तो फिर महापुरुषों की, गुरु की प्रसन्नता से वो शब्द जो होता है उसका अर्थ हमारे अंदर प्रकाशित हो जाता है। एक ऐसा भी कहते हैं कि गुरु के ऊपर श्रद्धा जब होती है तभी उसका अर्थ हमारे अंदर प्रकाशित होता है उपदेश का। यस्या देवे पराभक्ति, जिसकी देव में, परमात्मा में पराभक्ति है, अनन्य भक्ति है। यस्या देवे, जिसकी, जिस प्रकार उसकी गुरु में है, यथा देवे तथा गुरु, जिसकी जैसी परमात्मा में भक्ति है ऐसी यदि गुरु में भक्ति होती है पराभक्ति। तो भाव जब गुरु को कैसा मानता है, ईश्वर गुरुरात्मे मूर्ति भेद विभागिना, जब ऐसा मानता है ना कि ईश्वर गुरु आत्मा इति, ईश्वर और गुरु दो आत्मा मेरे को दिखाई पड़ रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। जब उसकी पराभक्ति होती है तो अनन्य भक्ति से चिंतन करता है तो बोलता है कि गुरु ईश्वर आत्मा इति क्या है, मूर्ति भेद विभागने। वो बोलता है कि केवल मूर्ति का भेद है, गुरु और ईश्वर दोनों एक हैं। ऐसे जब चिंतन करता है तो उसके अंदर गुरु उपदेश का अर्थ जो फलीभूत होता है। तो फिर मानते हैं कृपा, तो गुरु महाराज जी कहते हैं कि गुरप्रसादी सहज उपजे। जब गुरु की प्रसाद कृपा आपके ऊपर होती है तो सहज उपजे, तब आपके अंदर ज्ञान का उदय होता है। गुर बिन घोर अंधार, गुरु बिन समझ न आवे। गुर बिन सुरति न बुद्ध, गुरु बिन मुक्त न पावे। गुर बिन घोर अंधार है उसके अंदर, जब तक गुरु नहीं मिला उसको तो उसका अंधेरा कोई दूर नहीं कर सकता। गुरु का अर्थ यह है, रू शब्द अंधकारा स्यात्, रू शब्दस्तन निरोधिका, अंधकार निरोधित्वाद गुरु रित्या विधीयते। गुरु शब्द का अर्थ क्या है? गुह का अर्थ है अंधकार, रू का अर्थ है प्रकाश। तो अंधकार निरोधित्वाद गुरु रित्या विधीयते, गुरु गीता का जो श्लोक है कि जो आपके अंधकार को नाश करके आपके अंदर ज्ञान का प्रकाश करता है उसको कहते हैं गुरु। तो वहाँ महाराज जी कहते हैं गुर प्रसादी सहज उपजाए, गुरु की प्रसाद से कृपा से आपके अंदर ज्ञान की प्राप्ति होती है। यह सहसा इब जाए, ये जो आपके अंदर द्वैत रूपी संसा था वो इस संयम से, इस उद्यम से, इस साधन से जाता है। तो जब हम इस प्रकार चिंतन करेंगे तो फिर हम असुर वृत्ति हमारी नहीं बनेगी, आत्मघाती वृत्ति नहीं बनेगी। फिर हमारी वृत्ति कैसी बन जाएगी? ईशावासमिदम सर्वम। फिर हमारे भोग में त्याग और अर्थ में निर्लोभता आ जाती है। तो इसलिए ये जो तीसरा श्लोक था, इससे इसका रहस्य ये हुआ कि आप चिंतन करके तो आत्मा का साक्षात्कार कीजिए। आत्मा का हनन नहीं करना, आत्मा का चिंतन करना है। शरीर का बाध करना है आपने, शरीर का जो तीन शरीर हैं उन शरीर से आसक्ति हटानी है, अध्यास को दूर करना है। जब शरीर का अध्यास देह अध्यास जब छोड़ देंगे तो फिर आत्मा का दर्शन होगा। आवन आए सृष्टि में बिन पूजे पस ढोर, सृष्टि में आए हैं हमारे को जो जन्म प्राप्त हुआ है, तो यदि हमने अपने आप को नहीं जाना तो पशु के समान हैं। तो चिंतन करेंगे तो अवश्य हमारे को मंगल की प्राप्ति होगी। तो आज जहाँ ही रखते हैं, क्योंकि अभी रामायण का पाठ आरंभ होगा, पंडित जी आ गए हैं, इसलिए आज जहाँ रखते हैं। कल को चौथे मंत्र क्या फिर विचार करेंगे। हरिओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। श्री स्वामी जी महाराज की जय। सद्गुरुदेव महाराज की जय। हर हर।